इस घड़े के हिसाब से एक घंटा का 8:40 तक ठीक है 8:40 तक
जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर यशोदानंदन जय गज जनरंजन यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदा जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर्ष श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन व्रत मनाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम नंदी गौर ग्लोरीज तो सुमंड गोटीज गौर ग्लोरीज तो सुमंड गोटीज गौर ग्लोरीज तो सुमंड गोटीज गौर ग्लोरीज तो श्री गुरु एंड गौरांबार। तो आज कौन सा श्लोक है? आठवें अध्याय का 27-28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 8 अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 27 और 28। श्लोक संख्या 27 मेरे पीछे बोले। नैते श्रुति पार्थ जानम योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानम योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। शब्दार्थ बोलिए। ना कभी नहीं केते इन दोनों स्थिति विभिन्न मार्गों को पार्थ हे प्रथापुत्र जानन जानते हुए भी योगी भगवत भक्त मोह्यति मोहग्रस्त होता है कश्चन कोई तस्मात् अतः सर्वेषु कालेषु सदैव योग युक्तः कृष्ण भावनामृत में तत्पर भव हो अर्जुन। हे अर्जुन अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अर्जुन यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान ने इसके पहले दो मार्ग बतलाए हैं, एक शुक्ल मार्ग और दूसरा कृष्ण मार्ग। भगवान ने बतलाए थे शुक्ल गति और कृष्ण गति। शुक्ल गति में योगी ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं और कृष्ण गति में योगी चंद्रलोक में पहुंच जाते हैं।
तो ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं वापस नहीं आते हैं, और चंद्र लोक में पहुंच जाते हैं तो वापस आते हैं। तो ये दो जो है गतियां भगवान ने बतलाई थी। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं नैते श्रुति पार्थ जानन, हे पार्थ इन मार्गों को जानता हुआ योगी मोहयति कश्चन है ना एते, है ना, तो यहाँ ना इधर आएगा योगी ना मोहयति कश्चन है, शुरू में ना शब्द आया है तो इसको ऐसे अन्वय करेंगे एते श्रुति पार्थ जानन योगी ना मोहयति कश्चन, ना जो शुरू में है उसको इधर लाए, योगी ना मोहयति मतलब योगी नहीं मोहित होता है, मोहित होता मतलब भ्रमित नहीं होता, दुविधा ग्रस्त नहीं होता है। योगी को जो है किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है। दुविधा समझते हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, है ना, तो दुविधा होती है। तो भगवान कहते हैं कि योगी को कोई दुविधा नहीं होती है। और योगी का शब्दार्थ है प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, कौन बताएगा योगी का शब्दार्थ क्या लिखा प्रभुपाद ने, भगवत भक्त, है ना, ये जो है मतलब बिल्कुल सीधा। जो दूसरी गीता है उसमें योगी का शब्दार्थ भगवत भक्त नहीं लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में योगी का जो शब्दार्थ है वो भगवत भक्त ही है। क्योंकि तो योगी का मतलब है जो अपना योग यानी संबंध स्थापित करता है भगवान के साथ, तो योगी का मतलब भगवत भक्त है। तो प्रभुपाद इतना अच्छा अर्थ देते हैं कि जिसमें किसी प्रकार का संदेह ना रहे योगी का क्या अर्थ है ना, योगी ना मोहयति, तो भगवत भक्त नहीं मोहित होता है। तस्मात सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवति, इसलिए सब समय में तुम योग युक्त बनो, भगवान करें सब समय में। तो उसको जो है मोहयति का मतलब चिंतित भी होता, चिंताग्रस्त। योगी जो है किसी प्रकार से चिंताग्रस्त नहीं होता, चिंताग्रस्त जो वैसे लोग होते हैं जो शुक्ल गति पाना चाहते हैं तो उनकी चिंता होती है, उनकी चिंता होती है कि उनको शरीर किस समय छोड़ना है, उनकी चिंता होती है। शुक्ल गति अगर कोई पाना चाहता है तो उसकी चिंता होती है कि उत्तरायण के 6 महीने का समय होना चाहिए, फिर उसके अंदर भी शुक्ल पक्ष 15 दिन का समय होना चाहिए, फिर उसके अंदर भी दिन का समय होना चाहिए, और दिन में भी जो है वो अग्नि का समय होना चाहिए, क्योंकि अग्नि का समय और धुआं का समय भी होता है दिन में। तो उसकी चिंता होती है कि भाई ऐसे समय मुझे शरीर छोड़ना है, है ना। और जो कृष्ण गति होते हैं, कृष्ण गति पाना चाहते हैं तो वे शरीर छोड़ते हैं दक्षिणायन के 6 महीने में, और उसके अंदर भी कृष्ण पक्ष के 15 दिन का समय होना चाहिए, फिर उसमें भी रात्रि का समय होना चाहिए, फिर उसमें भी धुएं का समय होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो शरीर छोड़ते हैं तो चंद्रलोक को जाते हैं और वहाँ पर भोगों को भोग करके वापस आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि वो मोहित नहीं होता या चिंताग्रस्त नहीं होता, इस चक्कर में नहीं पड़ता उत्तरायण का समय हो या दक्षिणायन का समय हो, दिन का समय हो या रात का समय हो, शुक्ल पक्ष का समय हो या कृष्ण पक्ष का समय हो, उसकी चिंता नहीं होती। वो हर समय तैयार रहता है शरीर छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि योग युक्त है। योग युक्त का अर्थ रूपा देखते हैं कृष्ण भावना अमृत में तत्पर है ना, तो कृष्ण भावना भावित है तो फिर उसके लिए कोई चक्कर नहीं है।
वो किसी भी समय शरीर छोड़े, दिन में या रात में या शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में या उत्तरायण में, किसी भी समय शरीर छोड़े, उसके लिए तो कृष्ण की प्राप्ति निश्चित है, उसके लिए कोई चक्कर नहीं। इसलिए भगवान ने तस्मात सर्वेशु कालेषु योग योग तो भवावे। अब तस्मात सर्वेशु कालेषु ये श्लोक इसी में है, कोई बता सकता है? तस्मात सर्वेशु कालेषु से एक श्लोक शुरू होता है, कौन बताएगा? तस्मात सर्वेशु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। तस्मात सर्वेशु यहाँ पर कहा है तस्मात सर्वेशु कालेषु योग योग तो भव, योग युक्त बनो, है ना। और सातवें श्लोक में भगवान ने कहा हरि बोल, ये आवाज ठीक है कुछ है ना, ये बीच बीच में बंद हो जाता है, इसकी बैटरी डाउन हो गई, क्या हुआ है, कनेक्शन लूज। हरि बोल, इससे आप लोगों को सुनने में बाधा पड़ती होगी। हरी बोल, नहीं नहीं वो उसकी बात नहीं है, वो या तो कनेक्शन लूज है या कुछ बैटरी का चक्कर है कि बैटरी डाउन हो गई। इसमें बैटरी है क्या? कनेक्शन लूज है। हरी बोल, अब ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, तस्मात सर्वेशु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। और यहाँ पर कहा है तस्मात सर्वेशु कालेषु योग युक्त भव, योग युक्त बनो। तो योग युक्त का मतलब कृष्ण का स्मरण करना। तो इतना सीधा सीधा अर्थ प्रभुपाद ने निकाल दिया है कि अब घुमाने फिराने की जरूरत ही नहीं, इतना सरल और सीधा कृष्ण का, कृष्ण की। जो मायावादी लोग होते हैं, जहाँ कृष्ण कहते हैं माँ मनुस्मर, उसमें भी वो जो है घुमा फिरा करके कृष्ण को निकालने की कोशिश करते हैं। गीता की टीका ऐसे करते हैं, जहाँ कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो वो घुमा फिरा करके कृष्ण को निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना है, कृष्ण के अंदर कुछ अविनाशी वस्तु उसकी शरण लेनी है, निर्विशेष वस्तु है कृष्ण के अंदर उसकी शरण लेनी है, व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं लेने हैं, जो पर्सनालिटी है उनकी शरण नहीं लेनी है, इनपर्सनल कुछ वस्तु है कृष्ण के अंदर उसकी शरण लेनी है। लेकिन ये भक्ति वेदांत शब्दार्थ, भक्ति वेदांत अनुवाद और भक्ति वेदांत तात्पर्य है, इसलिए शब्दार्थ भी जो है भक्ति वेदांत है, है ना। तो इसमें जो है भक्ति वेदांत अनुवाद बिल्कुल सीधा, हमें जो है कृष्ण की शरण लेनी है, कृष्ण का स्मरण करना है ना, और कुछ नहीं है। हम प्रभुपाद का तात्पर्य सुनेंगे, श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उन्हें इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो स्वेच्छा से मरेगा या देव वशात। हाँ, ये भी होती चिंता भाई, एक तो मृत्यु होती है कि पहले से धीरे धीरे शरीर छूट रहा है, ऐसा होता है। अब शरीर छूटना छूटने वाला है ना, कोई बीमार होता है, कुछ होता है, अब जो है इस हफ्ते तो शरीर छूट जाएगा। तो ये होती है मतलब ऐसी कि अपनी तैयारी जो कुछ भी करना कर लो, और देव वशात का मतलब है एकदम तुरंत ही शरीर छूट जाए, पहले से हमारी कोई तैयारी ही नहीं है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उस भक्त को जो है इसकी चिंता नहीं होना चाहिए कि किस समय मरेंगे। जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी ने जो है अपने उस जन्म कुंडली के आधार पर या जहाँ से भी हो किसी माध्यम से पता, उनको पता चला था कि उनकी मृत्यु होगी दुर्घटना से। तो दुर्घटना मतलब देवशात, पहले से कुछ तैयारी ही नहीं है और एकदम से कोई दुर्घटना हो और शरीर छूट जाए, तो सामान्य लोग जो है ये नहीं चाहते हैं।
ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां किसी को सौंप दें, किसी को ट्रेन करें और फिर हम जो है अपना शरीर छोड़ेंगे तो अपना काम जो है किसी को सौंप दें। लेकिन तमाल कृष्ण गोस्वामी ने प्रभुपाद को बताया कि इस तरह की मुझे सूचना मिली है, तो प्रभुपाद ने कहा तो तुम अगर चाहो तो कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हो तो तुम्हारी जो मृत्यु है तो वो जो है बदल जाए। बदल जाए के मतलब कि तुम तैयारी पहले से तुम्हें पूर्व सूचना मिल जाए तो वो। लेकिन तमाल कृष्ण गोस्वामी बोले कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी समय तैयार हूँ। तो उन्होंने इसके लिए कृष्ण से प्रार्थना नहीं की। सब लोग जानते हैं कि दुर्घटना हुई, उसमें शरीर छोड़ा उन्होंने, तो वो तैयार थे किसी भी समय शरीर छूट जाए। उनका जो है एक पैर गोलोक धाम में पहले से ही रखा हुआ है, तो कुछ चिंता ही नहीं है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त को कृष्ण भावना मृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। बहुत सरल बात जो है प्रभुपाद ने हर समय, क्योंकि और जो दूसरी विधियां हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, है ना। हरे कृष्ण का जप कहीं भी कर सकते, अंधेरे में भी जप कर सकते हो और उजाले में और चलते फिरते भी जप कर सकते हो, और जब चिंताग्रस्त स्थिति है, दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, तो भी हरे कृष्ण का जप कर सकते हो। दिमाग एकदम काम करना बंद कर दे और आपको कुछ याद ना आए, कुछ बोल ना पाए, तो भी हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। तो अभ्यास अगर कोई व्यक्ति करे, आगे प्रभु लिखते हैं, उसे ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। ना तो मुझे शुक्ल गति चाहिए, ना मुझे कृष्ण गति चाहिए, इससे करना नहीं है। मुझे क्या चाहिए, कृष्ण के चरण कमल। आगे कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान के सेवा में सदा सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम सुनिश्चित तथा सीधा होगा। क्या स्वतः सुगम सुनिश्चित और सीधा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वो अपने सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। योग युक्त श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। सांसारिक कार्यों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आसक्ति त्याग करके आप करो और कृष्ण भावनामृत में करो। तो हरे कृष्ण भी अगर बोलते रहेंगे तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो भी दिव्य हो जाएगा, है ना। आगे इस विधि से जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, योग युक्त भगवान कह रहे हैं योग युक्त बनो, है ना। तो प्रभुपाद इसका जो है एक दूसरा शब्द बता रहे हैं, रूप गोस्वामी ने जो दिया है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य है क्या श्लोक है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तम वैराग्यम् उच्यते। युक्त वैराग्य है कि आप विषयों में आसक्त ना होकर के यथार्थम् उपयुञ्जतः, और हर चीज का उपयोग आप करते हैं अगर कृष्ण की सेवा में तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। युक्त वैराग्य है ना। और यहाँ भगवान कह रहे हैं योग युक्त बनो, है ना, सर्वेश्वर काले से योग युक्त बनो, तो कुछ कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। आगे अतः भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता क्योंकि वो जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम का उसका प्रयाण सुनिश्चित है ना। जैसे प्रभुपाद ने भी शरीर छोड़ा, हाँ कितनी तारीख थी वो, 14 नवंबर 1970 तो दक्षिणायन का समय होता है, 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है, मकर संक्रांति का जो दिन होता है, कभी 14 जनवरी कभी 15 जनवरी होता है, तो वो उत्तरायण उस समय लगता है। तो प्रभुपाद ने कोई चिंता नहीं की ये उत्तरायण आने दो तब जो है मैं सर्दी छोड़ूंगा, प्रभुपाद ने कोई चिंता नहीं की। क्यों? अनन्य चेता सततम जो माँ विस्मरत नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य योगता से योगी न। श्लोक संख्या 14, प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा था 14 नवंबर को, तो श्लोक संख्या 14 में यही है। अनन्य चेता सततम जो माँ विस्मरत नित्य सह, तो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है तस्य अहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त है योगी को मैं सुलभ हूँ। तो किसी भी समय शरीर छोड़े कृष्ण उसके निकट है ना। तो हम अब आगे इस अगला श्लोक पढ़ेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। शब्दार्थ वेदेषु, वेदाध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपःसु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, च भी एव निश्चय ही दानेषु दान देने में, यत् जो पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल प्रदिष्टम सूचित अत्येति लांग जाता है तत्सर्वम वे सब इदम यह विदित्वा जानकर योगी योगी परम परम स्थानम धाम को उपहेति प्राप्त करता है, च भी आद्यम मूल आदि। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति करने से नहीं भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो श्लोक को फिर समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदेषु, सबसे पहले शब्द वेदेषु। वेदेषु का मतलब है वेदों में या वेदों का अध्ययन करने में, है ना। यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, तो ये सबके साथ आएगा, सब शब्दों के साथ में यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम ये बात आएगी कि जो भी पुण्य फल बताया गया है। वेदेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, वेदों में जो पुण्य बताया गया है। फिर
यज्ञेषु, यज्ञ करने में जो पुण्य बताया गया, फिर तपासु, तप करने में जो पुण्य बताया गया है, फिर दानेशु, दानेशु का मतलब है दान करने में जो पुण्य फल बताया गया है, तो चार प्रकार के कार्य बताए गए हैं। एक तो वेदों का अध्ययन करना, दूसरा यज्ञ करना, तीसरा तपस्या करना, चौथा दान करना। तो चार प्रकार के कार्यों में यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो भी पुण्य फल बताया गया है। अत्येति, अत्येति का मतलब इनसे ऊपर उठ जाता है, जो भी पुण्य फल बताए गए हैं उनसे वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने का मतलब क्या है कि बहुत तुच्छ है, उसके लिए बहुत तुच्छ होते हैं। अत्येति का मतलब है कि वो उनको चाहता ही नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर 10 करोड़ रुपए का लाभ हो जाए तो वो 1-2 रुपयों के चक्कर में पड़ता नहीं कि ये मिले उसको। तो वेदों का, यज्ञों का, तपस्या का, दान का जो भी फल है, तो वो जो योगी है उनसे क्या होंगे, अत्येति माने बहुत ऊपर उठ जाता है, बहुत ऊपर उठ जाता है। तो उसको कभी भी इस बात की इच्छा नहीं होती कि इनके फल मुझे मिले। तो कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई तो ये सब जो है बहुत तुच्छ चीजें हैं। वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, तपस्या करना, दान करना, इनका जो फल बताया गया है, पुण्य फल बताया गया है, वो बहुत तुच्छ है, उसको जो है वो कभी नहीं चाहता है। अत्येति तत्सर्वम इदम मिथित्वा, तो तत्सर्वम का मतलब है उस सब को, चारों प्रकार के कार्यों के जो पुण्य फल है उस सब को वो क्या करता है, ऊपर उठ जाता है इनसे। इदम मिथित्वा, ये बात जान करके, क्या बात जान करके, कृष्ण के भक्ति का महत्व, कृष्ण की भक्ति का महत्व जान करके, इदम मितत्वा योगी परम स्थानम उपैति, योगी परम स्थान को प्राप्त करता है। आद्यम, आद्यम का मतलब है आदि, जहां से हम आए हैं, आदि स्थान, तो वहां पर प्राप्त करता है वो स्थान है। आदि कृष्ण आदि पुरुष है और उनका जो धाम है वो आदि स्थान है। आद्यम स्थानम, आद्यम स्थानम है। अब हम सुनिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की। ये श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। अब देखो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है, लेकिन वैसे कोई व्यक्ति अगर देखे तो यहाँ पर ना तो कृष्ण शब्द आया है और ना भक्ति शब्द आया है ना, इस बात को समझना है। क्योंकि भगवान ने ऐसी बातें पहले से बोल दी हैं कि मेरा स्मरण करे कोई तो मेरे स्थान में आता है, भगवान ने पहले बता दिया है। इसलिए यहाँ पर भगवान जो है ना तो मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो मेरा भक्त है वो, योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान और परम स्थान का प्रयोग कर रहे हैं, परम स्थान मेरा धाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो परम स्थान क्या है, कृष्ण का धाम है। आद्यम, आद्यम परम स्थानम, तो लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत और भक्ति का इसमें विशेष वर्णन है ना।
इसको समझना।
आगे मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्यन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो वेदों का अध्ययन और तपस्या, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। मनुष्य जीवन के चार आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो चार आश्रम में से ब्रह्मचर्य आश्रम में ये दो कार्य होते हैं, वेदों का अध्ययन और तपस्या। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है। गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है जो है, और 5 साल से वो गुरु के घर में चला जाता है। माता पिता का स्नेह उसको नहीं मिलता, तो गुरु के द्वारा कभी कभी कठोर व्यवहार मिलता है। कोई सुख नहीं तपस्या का जीवन, बहुत तपस्या है ना? और क्या उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। 5 साल से वो बच्चा द्वार द्वार में भिक्षा मांगता है और कुछ नहीं खा सकता, गुरु को देगा। गुरु अगर देंगे तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। 5 साल, 5 साल से गुरु की सेवा में। आगे उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। अगर गुरु आदेश ना दें, भूल जाएं, है ना, तो भोजन नहीं करता वो, है ना। तो ये जो है मतलब वेद और तपस्या इस प्रकार से होता है, है ना। कलयुग में संभव नहीं है, कलयुग में संभव नहीं है, है ना। पहले के युगों में ऐसा होता था, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने जो है मतलब ब्रह्मचारियों को आदेश दे रखा है, मंगल आरती और जप और क्लास और प्रसाद, है कहने की जरूरत नहीं है, आओ और खाओ। लेकिन शिष्य को जो है, और कई शिष्य हैं, गुरु जी को ही जो है मतलब कहना पड़ेगा तब शिष्य खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, है ना। तो प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई वो बोलेंगे तभी खाओ खाओ, है। लेकिन हाँ, प्रभुपाद ने सुझाव दिया अपना, अपनी ओर से, कि अगर मंगल आरती नहीं आते तो प्रसाद ना खाओ, उससे आपकी जो है मतलब मंगल आरती का महत्व तो समझेंगे आप। तो मंगल आरती का महत्व तो है, नो मंगल आरती नो प्रसादम, तो ऊपर देगा। लेकिन ये कठोर नियम नहीं बनाया, खाते हो तो खाओ, लेकिन अगर नहीं खाओगे तो इससे आपकी बहुत शुद्धिकरण होगा, है ना। आगे प्रोपड़ते हैं, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि गुरु जी ने आज मुझे बुलाया नहीं, हाँ, और भिक्षा मांगी दिन भर, भिक्षा मांगी और गुरु जी को दी, है, शिकायत नहीं कर सकता है। दास गुरु जी के प्रति उसका जो है कोई ऐसा दुर्भावना नहीं होती है, बहुत इसमें जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दुर्भावना आती है तो वो जो है उसको निकालता है दुर्भावना, गुरु जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, है ना। आगे प्रोपड़ते हैं, अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वो परम चरित्रवान बन जाता है। परम चरित्रवान, गुरुकुल में स्त्रियां नहीं होती हैं, को एजुकेशन नहीं,
वाह, लड़के लड़कियां साथ पढ़े हैं और फालतू की बातें करें, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। लड़कियां हैं अपने पिता से शिक्षा प्राप्त करती हैं अपने घर में रह करके, और जो लड़के हैं वो गुरुकुल में रह करके जो है गुरु की सेवा में रहते हैं, तो परम चरित्रवान बन जाता है उसका जीवन। आगे, वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अभितु चरित्र निर्माण के लिए है। अभी तो क्या है, मनोधर्मी लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों से ही जो है कैसी गलत गलत निष्कर्ष निकालते हैं कि गाय की हत्या करना, गाय का मांस खाना, ये वेदों में लिखा है, ये है वो है, कितने उल्टे उल्टे जो है निष्कर्ष निकाल रहे हैं वेदों के द्वारा, जबकि बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके ही वेदों का अध्ययन करना है। तो उनको अधिकार नहीं है वेदों का अध्ययन करने का, लेकिन वे जो है वेदों का अध्ययन करते हैं और उल्टे उल्टे निष्कर्ष निकालते हैं। आगे प्रभु पढ़ते हैं, इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गुरु उसको आज्ञा देते हैं कि अब तुम जा सकते हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो, है ना। तो फिर अपने घर आता है वो, मतलब 20 वर्ष या 25 वर्ष अवस्था में। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं। हाँ, अब देखिए वेद और तपस्या चार चीजों में से दो चीजें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई, वेद अध्ययन और तपस्या, है ना। अब यज्ञ की बात प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ आश्रम में यज्ञ, गृहस्थ रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वो आगे उन्नति कर सके। लेकिन कलयुग में एक ही यज्ञ बताया गया, संकीर्तन यज्ञ। उससे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। तो गृहस्थ आश्रम में यज्ञ और दान, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद अध्ययन और तपस्या, और गृहस्थ आश्रम में यज्ञ करना और दान देना, तो चारों चीजें इसमें कवर हो गई, है ना। लेकिन दान कैसा करना है, सात्विक दान, राजस दान और तामस दान में अंतर करते हुए दान देना चाहिए, जिससे दान कैसा हो, सात्विक दान हो। रजोगुणी दान कैसा होता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वापुनः, कि दान जब कोई व्यक्ति देता है इस भाव से कि भाई इनसे हमें भी उपकार मिलना चाहिए, मिलेगा प्रति उपकार के लिए कोई व्यक्ति दान देता है, इनसे हमारा काम निकलना है इसलिए दान देना है। फलम उद्देश्य वापुनः, या फिर फल का उद्देश्य रख करके कि मुझे फल अपना अलग से मिलेगा, इस जीवन के बाद फल मिलेगा, क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भोगों की प्राप्ति होगी अगले जीवन में। तो इस जीवन में या तो वो दान देता है किसी को कि इसी व्यक्ति जिसको मैं दान दे रहा हूं इस व्यक्ति से मेरा फायदा होने वाला है, या दान दे तो इनसे हमें कुछ फायदा नहीं लेना है, या इनसे कोई मुझे फायदा नहीं होना है, इन दान दे रहा हूं किससे कि मुझे फायदा होगा स्वर्ग की प्राप्ति का, स्वर्ग मिलेगा, भोग मिलेंगे, है ना। तो भी रजोगुणी दान है, फलम उद्देश्य वापुनः, और दिए दय दिए तेज परिक्लिष्टम, और या फिर दान दिया जाता है परिक्लिष्टम, क्लेश पूर्वक कि कहाँ से आ गए ये जो है दान लेने के लिए, अब तो देना ही पड़ेगा कि, है ना, मेरे सिर में चढ़ेंगे, सिर खाएंगे बहुत, है दान, चलो दे दो यार, तो झुंझलाहट के साथ दान देता है, कष्ट क्लेश पूर्वक दान देता है, तो ये रजोगुणी दान है, है ना। और तमोगुणी दान क्या है, अदेश काले यद दानम अपात्रे भेष दिए थे, अदेश काले
उचित स्थान नहीं है और उचित समय नहीं है, उचित व्यक्ति को दान नहीं दिया जाता है। अवेश काली धन अपात्र भेष दिए थे। असत्कृतम अवज्ञातम, सत्कार पूर्वक नहीं दान देता है। दान जो है जिसको दिया उसका वो सत्कार नहीं करता है, सत्कार नहीं करता है और असत्कृतम अवज्ञातम और अपमान करता है, अपमान करता है। लो ये लो और भागो, चलो भागो यहाँ से। इस प्रकार से जो दान करता है असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहरतम, तो वो तमोगुणी दान है। असत्कृतम अवज्ञातम है ना, जैसे किसी धनी व्यक्ति ने जो है किसी ब्राह्मण को बोला कि पंडित जी तुम भी सोचोगे कि किसी ने इतना दान दिया, तुम भी सोचोगे कि किसी ने इतना दान दिया। तो पंडित जी सात्विक थे तो बोले कि तुम भी सोचोगे कि किसी ने ये दान छोड़ दिया, उन्होंने नहीं लिया क्योंकि अपमान कर रहा है व्यक्ति, तो तमोगुणी दान है ये। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि सात्विक दान, सात्विक राजसिक और तामसिक है ना। तो भगवान ने गीता में ये कुछ बातें इतनी महत्वपूर्ण बतलाई हैं जिनसे हम जो है अंतर कर सकते हैं, और बहुत उपयोगी बातें हैं। दान है रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, सत्वगुण में होता है। नहीं तो सामान्यतः लोग सोचते हैं दान है सब बराबर है ना। तमोगुण में दान दिया जाता है, मान लो वेश्यावृत्ति के लिए दान देता है कोई व्यक्ति है ना, शराब के ठेके में दान देता है, शराब पिलाने की दान देता है, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए दान देता है, चाय पीने के लिए दान देता है, तमोगुण दान है ना। जुआ खेलने के लिए दान देता है ना, नाच गाना कराने के लिए दान देता है, तमोगुण दान है। लोग सोचते दान दान ही तो है, कैसे भी दान करो दान ही, लेकिन वो तमोगुणी है। तो सत्वगुण में दान कैसा होता है, भगवान ने जो बताया गीता में वो मतलब बहुत उपयोगी है। इतना मतलब शास्त्रों में मिलते नहीं बातें, हालांकि बहुत विस्तृत विस्तृत जो है वर्णन होता है शास्त्रों में, अनेक विषयों का वर्णन बहुत विस्तृत है, लेकिन गीता में जो है थोड़े थोड़े शब्दों में भगवान ने इतना मतलब वो बातें बताई हैं जो कि मतलब अपने लिए बहुत उपयोगी हैं जानने के लिए, जिससे कि आप जो है मतलब किस गुण में दान दे रहे हैं आप समझेंगे, और किस गुण में दान देना चाहिए आप समझेंगे ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि अंतर करते हुए दान देना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा छौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। छौर कर्म जानते क्या है, शेविंग, वहां पर जो है शेविंग करने की सुविधा नहीं मिलती है जंगल में वानप्रस्थ में है ना, बिना छौर कर्म किए है कठिन तपस्या करनी होती है। तो वानप्रस्थ आश्रम में भी तपस्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में तपस्या और वेदाध्ययन है, और वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या है, तपस्या है कठिन तपस्या। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है, तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि भी और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनावृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। अब इसमें कितना चक्कर है,
है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो इन सब जो है आश्रमों में गुजर करके और व्यक्ति को जो है अंत में वो अगर चेतना शुद्ध हो गई तो वैकुंठ जा सकता है, और अगर चेतना शुद्ध नहीं हुई है लेकिन भौतिक कामना नहीं है तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होगा, और भौतिक कामना है तो स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एक ही झटके में किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी वर्ण में रहे, कोई चिंता नहीं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा सातवें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्युतता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अभी तो भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। तो दो प्रकार से नहीं समझना चाहिए, एक तो विद्युतता से समझना नहीं चाहिए, सातवां आठवां अध्याय अपनी विद्वत्ता से नहीं समझना चाहिए कि आप संस्कृत के बहुत विद्वान हैं, तो संस्कृत के जो है अर्थों पर विचार करके आप जो है समझेंगे। यह दूसरा है मनोधर्म, मनोधर्म का मतलब कि कुछ कल्पना कर करके आप उनके अर्थ निकालते हैं, तो दोनों चीजों से प्रभुपाद मना करते हैं। और किस विधि से? भक्तों की संगति से श्रवण करके, तो ये प्रभुपाद ने विधि दी है। गीता क्लास शाम को रोज, सवेरे भागवतम क्लास, तो ये भगवान श्रवण करके आगे सातवें से लेकर बारहवें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं, मतलब भक्ति योग सातवें अध्याय से लेकिन बारहवें अध्याय के छह अध्याय क्या है? भक्ति योग। और प्रथम अध्याय, प्रथम छह अध्याय क्या है? कर्मयोग। और अंतिम छह अध्याय क्या है? ज्ञान योग। इन मध्यवर्ती छहों अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, आवरण मात्र है। जैसे ये पुस्तक है ना, तो बीच में जो कागज हैं उनकी सुरक्षा कैसे होती है? एक ऊपर का गत्ता, दूसरा नीचे का गत्ता, है ना। तो उस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि गीता के जो है वास्तव में असली जो सार है वो छह अध्याय हैं, सातवें अध्याय से लेके बारहवें अध्याय तक है, और शुरू के छह अध्याय ऊपर का आवरण है, है? उसकी सुरक्षा करने के लिए, और अंत के जो छह अध्याय हैं वो दूसरा गत्ता। तो एक से लेके छह अध्याय ये ऊपर का गत्ता है गीता का, और तेरहवें अध्याय से बारहवें अध्याय ये छह अध्याय नीचे का गत्ता है, और गीता कितनी है? सातवें अध्याय से लेके बारहवें अध्याय तक, तो वो गीता का सार है। बहुत बढ़िया बताया। तो जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं, यदि कोई गीता के इन छह अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। आगे, जिससे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है, इष्टोस्मि में सखा चेति रहस्यम हेदद्वतमम्, कि तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, और तुम मेरे प्रिय हो। आगे, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। ये श्रद्धा का सूचक है
जब भक्ति की खोज की जाती है और अंततः भक्ति की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्ति की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप नाम लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वो अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है, तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वो कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वो नित्य सुखी रहता है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? हाँ जी, इनका प्रश्न है कि इतनी कथा सुनी जाती फिर भी मन भटकता है। नहीं, इतनी कथा नहीं सुनी जाती, हमें सुनना है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है नित्यम भागवत सेवया है, नित्यम भागवत सेवया है। जैसे आप रोज खाते हैं, कितना खाते हैं उतना क्या सुनते हैं? नहीं सुनते। जैसे भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से सुनना जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भोजन तो जरूरी है, भोजन के बिना काम कैसे चलेगा। सुनना अगर मौका मिल जाए सुनने का तो सुन लेंगे, और अगर नहीं मौका मिला तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ना सुनने से कोई काम नहीं रुकता है, काम चल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति नित्यम भागवत सेविया का नियम बनाए कि मुझे नित्य भागवत सुनना है ना, तब क्या होता है, नष्ट प्रायेश भद्रेशु, तो अभद्र नष्ट होते हैं। अभद्र जो है तभी नष्ट होते हैं जब नित्यम भागवत सेविया होगा, है ना। और सुनने का मतलब ये भी है मनन करना। जैसे धुंधकारी ने सुना, 7 दिन श्रीमद् भागवत सुना, उस दिन भागवत सप्ताह जो होता था उस समय, तो इस तरह का नहीं होता था जैसे आजकल होता है। उस समय भागवत सप्ताह होता था, संस्कृत के श्लोक ही केवल पढ़े जाते थे और 7 दिन में संस्कृत के जितने श्लोक हैं वही पढ़ के सुनाए जाते थे। प्रातः काल से लेके मध्यान्ह काल तक संस्कृत श्लोक ही पढ़े जाते थे और निश्चित होता था कि भाई कहाँ पर पहले दिन का विश्राम है ऐसे, और संस्कृत के श्लोकों से ही लोग समझते थे क्योंकि संस्कृत भाषा ही बोलचाल की भाषा थी। और शाम को जो कथा होती थी उसमें वो संस्कृत श्लोक जो पढ़े गए उन्हीं का कुछ जो है व्याख्या होती थी। तो धुंधकारी ने 7 दिन इस प्रकार से भागवत सुना, प्रीत था, प्रीत उन्हीं में था, और सुना तो उसने मनन भी किया, बिना खाए पिए सुना था तो मनन हुआ। तो धुंधकारी के लिए विमान आए वैकुंठ से, वैकुंठ जाने के लिए इसके पास विमान आया, तो गोकर्ण जिन्होंने कथा सुनाई थी तो विष्णु दूतों से पूछा उन्होंने कि जितने लोग सुन रहे हैं उतने ही विमान आने चाहिए, सबने तो 7 दिन की भागवत कथा सुनी, एक ही विमान क्यों आया? और धुंधकारी का शरीर भी बदल गया,
और जो है चतुर्भुज रूप बन गया विष्णु के पार्षद। विष्णु के पार्षदों का भी रूप विष्णु जैसा ही होता है, लेकिन वो विष्णु नहीं होते, वो सेवक होते हैं। तो जो विष्णु के जो पार्षद थे, तो उन्होंने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रेत ने कथा पर मनन किया, वो मनन और किसी ने नहीं किया, क्योंकि खाते पीते रहे तो फिर जो है मनन नहीं होता, सुना और फिर उसका जो है मनन नहीं होता। लेकिन जो प्रेत था उसने खाया पिया बिल्कुल नहीं, सुनता रहा और रात में सोता भी नहीं था, तो मनन करते थे। तो ये विधि है सुनने की कि आप कितने मनोयोग से सुनते हैं, जिससे कि आप मनन कर सकें ना, तब श्रवण की जो विधि है वो पूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, आपने जो सुना है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ये इतना जरूर है कि कई जन्म लग सकते हैं, और आप जो है अगर चाहते हैं कि ये मौका आपको अगले जीवन में मिले, तो अगले जीवन में ये मौका मिलेगा। और ज़्यादा मौका मिलेगा, इस जीवन में आपके ऊपर बहुत बंधन है जिससे कि आप नहीं सुन पाते हैं, और आपकी तीव्र इच्छा है सुनने की, तो आप अगले जीवन में ये सुविधा मिलेगी, आपके ऊपर ज़्यादा भार नहीं होगा और आपको सुविधा मिलेगी कि आप सुन सकेंगे। तो अभद्र नष्ट होते हैं, लेकिन नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत के भागवत का सेवन करने से, भागवत श्रवण करने से, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, हाँ हम लोग जो है दान लेते हैं, अगर वो क्लेश पूर्वक भी दान देता है, रजोगुण में क्लेश पूर्वक भी दान देता है, तो भी हम दान लेते हैं, और तमोगुण में अगर वो जो है कुछ थोड़ा बहुत अगर अपमान कर दे तो दान ले सकते हैं, लेकिन तो ज़्यादा अगर अपमान करे तो फिर दान लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर दान दे रहा है किसी भी प्रकार से, तो ये चूंकि कृष्ण की सेवा में लग रहा है ये दान, तो उसका जो है इसमें बहुत लाभ है। कृष्ण कहते हैं कि कुछ भी दान देते हो, अगर मुझे दान देते हो है ना, तो उसका जो है कई गुना फल मिलेगा कृष्ण की सेवा में, क्योंकि दान कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है ना, तो उसका जो है बहुत इसका सदुपयोग है। ठीक है, हाँ जो श्रोता कथा सुनते हैं उनको
विष्णु भगवान की प्राप्ति
हम जो है सामान्यतया वैकुंठ की बात करते हैं, लेकिन वैकुंठ भी कोई जा सकता है, कोई गोलोक वृंदावन भी जा सकता है। तो हमेशा
हम ये अंतर नहीं बताते रहते कि भाई अंतर है ये, क्योंकि वैकुंठ की प्राप्ति में भी आप जन्म मरण से छूट जाते हैं और भगवान की सेवा का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। फिर किसी का स्वरूप अगर गोलोक धाम में है कृष्ण की सेवा में, तो वो गोलोक धाम में जाएगा, और किसी व्यक्ति का स्वरूप वैकुंठ धाम में है, तो जिस वैकुंठ में उसका स्वरूप है तो वो उसी वैकुंठ में जाएगा। वैकुंठ भी बहुत से हैं, वैकुंठों की संख्या भी अनंत है, और सब वैकुंठों के ऊपर गोलोक धाम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी अवतार का जो है भजन करें, जब शुद्धिकरण होगा तो आपको स्वतः स्फूर्ति होगी कि आप कौन हैं। ठीक है ना, तो हमें ऊपर से कुछ थोपने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हमें तो ये बनना है वो बनना है, है ना। उसका जो प्रेम के धरातल पर जब आ जाता है तो उसका स्वरूप स्वयं प्रकट होता है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आगे चल के भक्ति कम हो जाए, वो अपराध की जो मात्रा है उसके आधार पर उसको गति मिलती है। जैसे कि भरत महाराज थे, तो उन्होंने अपना घर छोड़ा और भगवान का भजन कर रहे थे जंगल में, और एक हिरण का बच्चा जो पानी में बह रहा था, हिरण का बच्चा पानी में बह रहा था, उसको निकाल लिया और उसकी देखभाल करने लगे। फिर वो अपने हिरण के झुंड में मिल गया तो ये जो है चिंतित हो गए, जैसे कहीं शेर न खा ले, तो ये जो है बहुत गलत बात, तो उसका उनको जो है दंड उनको मिला, उनको हरण की ओनी प्राप्त हुई। तो हमें जो है बहुत सावधान रहना चाहिए, और हरे कृष्ण मंत्र अगर आप जप करते हैं तो इसमें वो प्रार्थना अपने आप हो जाती है कि हे कृष्ण और हे कृष्ण की शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भगवान इस विषय में ज़्यादा संवेदनशील हैं, जो दूसरी इच्छाएँ हैं तो उनको भगवान ज़्यादा महत्व नहीं देते, और पूरी करते हैं लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बनना चाहता है, कृष्ण की शरण लेना चाहता है, तो कृष्ण उसको ज़्यादा मौका देते हैं और उनको बहुत खुशी होती है कि हाँ ये जो है अपनी वास्तविक स्थिति में आना चाहता है। ठीक है ना, अच्छा हाँ, समय ज़्यादा हो गया, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय।